चुना और हाजिर हैं आपकी फरमाइश पे चॉइस मायर के साथ लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का कि वो बेहद मकबूल किस्तें। आज लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खुदा से नस्बत बांध कर आपकी जिंदगी बदल गई?
खुदाया मेरी दुआ है कि मसीह खुद को मुकम्मल तौर पर सुपुर्द करे। कई लोग यीशु के तूफ़ान दोज़ख से बचना चाहते हैं मगर कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करते।
देखते रहिए लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का।
हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ख्वाहिशें, हमारे ख्यालात और हमारे महसूसात कब हमारे लिए हैं, कब खुदा के लिए। आमीन। और कब शैतान को मात देने के लिए है। आपका दिमाग, आपके जज्बात का रूहानियत की तरफ बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं ड्राइविंग बोर्ड की तरफ, देखें कौन साथ देता है डाइव लगाने में। हम गहराई में गोता लगाएंगे, इसलिए डरो नहीं। रूह की तरफ बढ़ने के लिए आपको जिस्मानी जहमत उठानी है। किस्सा मुख्तसर, यही उन लोगों का बंटवारा हो जाता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो वादे वाली सरजमीन पर खड़े उम्र भर मिन मिनाते रहना चाहते हैं। लेकिन मैं सरहद पार जाऊंगी, अपने साथ दो से ज्यादा लोगों को ले जाना चाहूंगी। आमीन। हमारी हैसियत तो आरजी मकान की सी है। खुदा और उसकी इबादत गाह के मुकाबले में बाइबल में कहा गया है कि तुम नहीं, तुम्हारा वजूद खुदा की इबादत गाह है। हम तीन हिस्सों में बटी मखलूक हैं, रूह, जान, जिस्म। आरजी इबादत गाह के भी मंशूरे खुदावंदी के मुताबिक तीन खाने हैं, बाहरी हिस्सा, मुतबर्रक मुकाम और इंतकाई मुतबर्रक मुकाम। खुदा का कयाम इंतकाई मुतबर्रक मुकाम पर है। उसका मस्कन हमारी रूह है, यही सबसे मुतबर्रक मुकाम है और यही वो जलवा फरमा रहता है। इंजील के मुताबिक यही बिल्कुल दाखिली हिस्सा है आरजी इबादत गाह का। अंदरूनी और खारिजी हिस्सों को जहन में रखते हुए इब्रानियों के बाब 9 आयत 8 को आज पढ़ें और देखें कि गुफ्तगू में इस मसले पर गौर कर सकते हैं या नहीं। इस बारे में रूहुल कुदुस ने निशानदेही की है, इंतकाई मुतबर्रक मुकाम तक पहुंचने का रास्ता खुला नहीं है। जब तक टैबरनेकल बाकी है और उसकी हैसियत तस्लीम खुदा है, हम बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। कितने भी कोशिश कर लें, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसी तरह जब तक मेरी हैसियत बेरूनी हिस्से जैसी है, मैं रूह में नहीं समा सकती। सोचिए कि ये सोच लीजिए कि वही असली खुशी बसती है जो अमन का गवारा है, कुव्वत का मरकज वही है, बुलंद तरीन हस्ती का कयाम उसी खुफिया गोशे में है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, ये एक हकीकत है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। और पॉलस ने भी इसकी निशानदेही इस तरह की है कि मैं आपके अख्तियारात और मेरे तने मुर्दा में नई जान डालने के लिए आपके कमालात से वाकिफ हूं। जबूर के बाब 51 आयत 1 में है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सकुनत करेगा। मतलब ये कि लोगों की मुखालिफत और हालात की नाम वफीकत के बावजूद भी हम उस मंजिल तक जा सकते हैं, बशर्ते हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात, जी हां जिस्मानी ख्वाहिशात, जी हां, इनके सामने ना झुके। पता नहीं सहीफे के इस पैगाम को हम कितना समझते हैं। बाब 8 में कहा गया है कि जब तक जिस्मो जान की तवाजो और जयाफत करोगे, खुदा की खुशनुदी हासिल करोगे, क्योंकि वो हमारे इस रवैये से खुश नहीं होता। इसलिए जब तक हम जिस्म की परवरिश करते रहेंगे, खुदा की मेहरबानियां हमारे साथ नहीं होंगी और हम सबके लिए उसने जो मंसूबा बनाया है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और खुदा ने हमारी जिंदगी का अच्छा खाका तैयार किया है। बहवाला यर्मिया 29:11 इफिसियों 2:10, खुदा का मंसूबा बहुत अच्छा है, पहले से तरतीब दिया हुआ है, पहले से मुकद्दर किया हुआ है, पहले से मुकर्रर किया हुआ है। हम में से हर एक की जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा, हम लोग यीशु के साथ दोबारा तखलीक किए जाएंगे, हयाते नौ पाएंगे, ताकि हम नेकी करें और उस शानदार जिंदगी के हकदार बने जिसके लिए यीशु ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन्होंने इसलिए जान नहीं दी कि हम जन्नत में जाएं और दोजख से बचे, उनकी कुर्बानी का मकसद था कि हम जिंदगी के सफर में नेकी करें। शैतान लोगों को गाफिल रखकर ये समझाने की कोशिश करता है कि ये बड़ा कठिन रास्ता है, आंसुओं भरा रास्ता है, बेशक इस रास्ते में भी दुख है और तकलीफें भी हैं, और भी मरहले हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, इसके बावजूद हक ताला की पनाह और हिफाजत भी है। मैं आपसे एक सवाल करती हूं, जब आप खुदा के दरबार में इबादत के लिए हाजिर होते हैं और उसकी जात में खो जाते हैं, तो उस वक्त क्या आप अपने अदना मसाइल के बारे में जरा भी सोचते हैं? नहीं ना, उस वक्त आप इन मसाइल के बारे में भूल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो कभी थे ही नहीं। खुदा का एक मकाम होता है, उस मकाम तक पहुंचने के लिए अगर मैं अपनी बाकी मानदा जिंदगी भी गुजार दूं तो वो कम है, बहुत कम है। आमीन। इब्रानियों 9:8 दोहराएं, जिसमें कहा गया है, इससे रूहुल खुदुस का यह इशारा है कि जब तक पहला खेमा खड़ा है पाक मकान की राह हमवार नहीं हुई। गलेतियों के बाब 5:16 में कहा गया है, रूहानी रास्ते पर चलने के लिए दुनियावी हिर्स व तमा से मुंह मोड़ना होगा। ये नहीं कहा गया कि दुनियावी ख्वाहिशात नहीं होंगी। आपका जिस्म और हमारा जिस्म ललकारता रहेगा यीशु के दोबारा जाहिर होने तक हमारी निजात और रहनुमाई के लिए, लेकिन अगर हम यकसुई के साथ रूहानी रास्ते पर चलेंगे तब जिस्म की दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। ख्वाहिशात होंगी तो सही, मगर हम उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। आला मकासद की तमन्ना कीजिए। कुलोसियों के बाब 3:16 में कहा गया है, दुनियावी चीजों की जुस्तजू में ना रहे क्योंकि यीशु के साथ आपकी जिंदगी वाबिस्ता है और जो खुदा में पोशीदा है। क्या फरमान है, सही चीज पर नजर रखो, सही चीजों के लिए काविश करो जो आपके जिस्म के लिए मौजू व मुनासिब हो। लेकिन हमें यीशु के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं हुक्म के मुताबिक फैसला करती हूँ, खुदा की आवाज सुनकर कुछ करती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश और तमन्ना की कतई फिक्र नहीं करती। आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, बल्कि खुदा क्या कहता है, ये जरूरी है। हालांकि ये मुश्किल रास्ता है, बिल्कुल हमारे मादी वजूद पर चीखने चिल्लाने का दौरा पड़ सकता है। आप में से कितनों को मालूम है, कितनों को ये पता है कि आपके मादी वजूद के चीखने चिल्लाने से मेरी क्या मुराद है? लेकिन ये एक मिसल है, और जब भी आपको कोई चोट पहुंचाता है तो आप अपने वसाइल से अपना दिफा करने की कोशिश करते हैं। क्या बताऊं, कुछ लोग अरसे से मेरी बुराई कर रहे हैं, मतलब ये कि सरेआम मेरी ऐबजोई करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, जो आप पर तोहमत लगाते हैं आप उनके खिलाफ कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगी? नहीं, क्यों नहीं? आप जो भी समझे, यीशु ने कहा है कि मेरी दिफा में दौड़ते ना फिरो, उसने मुझे सिर्फ तबलीग करने को कहा है। अब मेरी इज्जत और नामूस का वही निगरान है और वही मेरी दिफा करेगा। यह मुझे अच्छा लगता है? नहीं। तकलीफ पहुंचती है, पहुंचती है, तो क्या मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती? कतई नहीं।